1983 में शिकागो में थे ये, तो लिखते हैं कि अखबारात में उस वक्त एक खबर छपी कि शिकागो इस सदी के खत्म होते होते मुसलमानों की अक्सरियत का शहर बन जाएगा। एक जगह जलसा यानी दरसे कुरान था, वहां पर चंद सहाफियों ने मुझसे सवाल किया कि अभी आपने तकरीर की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुसलमानों ने 83 यानी 83 जंगें लड़ी, और साथ ही आप कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं, शौरी अमल के रास्ते, तदब्बुर और इल्म से फैला। इधर से आप जंगों का जिक्र भी करते हैं। हमारी तहकीक है कि इस्लाम सारा दहशत गर्दी का नाम है और मुसलमान कौम ही दहशत गर्द है, और इसी दहशत के जरिए से ही इस्लाम फैला। ये कहते कि मुझसे रहा ना गया, मैंने वो पर्चा जिसमें वो सुर्खी छपी हुई थी कि शिकागो वुड बी अ मुस्लिम मेजॉरिटी सिटी बाय द एंड ऑफ सेंचुरी निकाल कर दिखाई और कहा कि ये अखबार मैंने तो नहीं शाया की, आप लोगों ने शाया की है। मैंने कहा कि यहाँ लोगों ने कौन सी तलवार आपके सर पर लटका रखी है, तुम लोग धड़ाधड़ मुसलमान होते चले जा रहे हो, रोक लो इन लोगों को मुसलमान ना बनने दो। कौन सी तलवार हमने लटका रखी है, कौन से एटम बम हमने फेंके हैं, यहां सिर्फ ये कि जो भी कुरान समझता है मुसलमान हो जाता है। हमने तो किसी को कोई रिश्वत नहीं दी। ये सीधा सादा एक तहकीकी शौरी अमल है जिसके जरिए से एक गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है। ईमान एक रवैया और सलूक का नाम है। ईमान कोई विरासती चीज नहीं, कोई भी इत्तफाकन यानी बाय चांस मुसलमान नहीं होता, इख्तियारी यानी बाय चॉइस तौर पर मुसलमान होता है, और इसकी बुनियाद इल्म, तहकीक और शौरी अमल है। बात समझ गए? आज दुनिया में इस्लाम फैल रहा है ना, कितने को मुसलमान इस काबिल हैं कि वो तलवारें लेकर लोगों के सर पे मुसल्लत हैं कि तुम मुसलमान हो जाओ नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। आप तो इस चीज की गवाही दे सकते हैं ना कि जहां भी इस्लाम फैल रहा है वो कुरान पढ़ के फैल रहा है। लोगों को इस्लाम की खूबसूरती, उसके कवानीन समझ आते हैं, वो मान जाते हैं। तो अगर आज के दौर में ऐसे है तो अल्लाह के नबी के दौर में भी ऐसे था। ये एक प्रोपेगंडा है कि इस्लाम तलवार से फैला है, इस्लाम शऊर से फैलता है। लोग आज इस्लाम के वो लॉज और रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं जो आज मुसलमानों ने किसी हद तक छोड़े हुए हैं। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमा दें। अब अगला टॉपिक है ईमान की बुनियाद क्या है। ईमान की बुनियादों में सबसे बड़ी बुनियाद तौहीद है, वाहिद, एक, ला इलाहा इल्लल्लाह, कुल हो अल्लाहु अहद, अल्लाह को एक मानना। देखिए असल दौलत ही यह है मुसलमान की। तौहीद के मतलब कुरान मजीद में बहुत सी आयात हैं, लेकिन सबसे बुनियादी आयत वो सूरत अल फातिहा की आयत है जो हम हर रकत में पढ़ते हैं, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं, सिर्फ तेरे आगे ही दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं। ये ईमान की दो बुनियादें हैं। क्या? इबादत सिर्फ अल्लाह की और मदद सिर्फ अल्लाह से। इस्तियानत यानी मदद अल्लाह से मांगना। इस्तियानत यानी मदद मांगने के मानी है, इसको हाईलाइट कर लें, किसी जात से इस यकीन के साथ मदद मांगना कि वो मेरे सारे काम करने वाला है, वो मेरा काम बना देगा, इसे इस्तेआनत कहते हैं। मसलन किसी से पानी का ग्लास मांगूं कि मुझे पानी पिलाओ, ये इस्तेआनत नहीं होगी। हाँ अल्लाह से यूं कहो कि या अल्लाह तू मुझे पानी पिला, ये इस्तेआनत होगी। या अल्लाह मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिला, मुझे रिस्क अता कर, ये इस्तेआनत होगी। ए अल्लाह मैं बे औलाद हूँ, मुझे औलाद अता फरमा, ये इस्तेआनत होगी। किसी डॉक्टर से जाकर इलाज करवाना ये इस्तेआनत नहीं होगी, लेकिन शिफा के लिए हाथ खड़े करना ये इस्तेआनत होगी। असबाब की दुनिया में जो सब कुछ देखते हुए असल मुसब्बब, फाइले हकीकी और असल कादर मुतलिक अल्लाह को जानना और इसी से मदद मांगना ये इस्तेआनत है। इबादत सिर्फ अल्लाह ताला के लिए, इबादत सिर्फ अल्लाह की, इस्तेआनत सिर्फ अल्लाह से। ये तौहीद की दो बुनियादें हैं और शिर्क की भी यही दो हैं, यानी अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक कर लेना, अल्लाह की इबादत करते हुए कोई आस्ताना, कोई पीर घोड़े शाह दरमियान में आ गया तो ये शिर्क हो गया। क्या समझ आई इस बात से? देखिए अल्लाह को नहीं मानना, सिर्फ अल्लाह को मानना। कुरान हमें ये नहीं कहता कि अल्लाह है, ये तो इंसान की फितरत भी कहती है। कुरान हमें ये बताता है कि सिर्फ अल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह से क्या पता चला? एक अल्लाह। अल्लाह की ज़ात, अल्लाह एक है। अब यहाँ चूँकि तौहीद की बात आई है तो मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद समझना, क्योंकि हम अपने इस सफ़र में चाहेंगे कि हमारा अकीदा इतना क्लियर कट हो जाए। क्योंकि देखिए ना, अभी तक हमने असरात पढ़े हैं ऐसा और वैसा, तो अभी इलाज भी तो पढ़े ना कि कमी किधर है। यानी मसलन आप कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह में मेरे कमी का है, तो आप कहते हैं कि तौहीद, तौहीद में कमी है, तो भाई तौहीद में क्या कुछ आता है? तो तौहीद को समझने के लिए हमें मज़ीद थोड़ा सा इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि एक अल्लाह को सब कुछ समझना, सब कुछ मानना, सब कुछ उसी के इख्तियार में है। एक इंसान जब दुनिया में ये बात समझ जाता है कि उसका रब सब कुछ कर सकता है, तो उसके बाद एक इंसान के दिल में किसी किस्म का कोई शक नहीं रहता। सादे से लफ्ज़ों में आप कह लेना तो तौहीद क्या है कि तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, बात ख़त्म। लोगों को मुश्किल बातें याद रखनी, तौहीद रबूबियत, तौहीद अलूहियत, तौहीद इबादा, उसको अगर आप साइड पे कर देना तो वो सारे जुमले के ला मकसूद इल्लल्लाह, ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला खालिक इल्लल्लाह, ला मालिक इल्लल्लाह, ला रज़ाक इल्लल्लाह, ला वहाब इल्लल्लाह, आप 99 नेम्स ऑफ अल्लाह ही के साथ अगर ला लगा के इल्लल्लाह कर देना तो आपको तौहीद समझ आ जाएगी। और ये कहने की बात नहीं है, ये बंदे के करके दिखाने की बात है। और ये वो जुमला है ला इलाहा इल्लल्लाह या तौहीद, वो चीज़ है जो एक बंदे को बंदा बनाती है। आप देखिए ना कि क्या था अबू जहल, क्या उसने नहीं किया, वो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ सका। काम तो अच्छे कुछ ना कुछ वो करता ही होगा ना। फिर इसी तरह आप देखिए कि तब्दीली जो आई सहाबा कराम में, वो कलमा पढ़ने के बाद एक अल्लाह पर नजरें लगाने की थी ना। इतने बहादुर हो गए थे सहाबे कराम कि रास्ते में कोई रोकता था कहते थे अल्लाह चाहेगा तो हम निकल जाएंगे, पानियों में रास्ते बने, दरियाओं में रास्ते बने, घोड़े दौड़ा दिए। ये तौहीद की दौलतें हैं। और याद रखिए, जितना बंदे का दिल अपने रब के साथ जुड़ा होता है ना, उतना अल्लाह का भी उसके साथ मामला खूबसूरत होता है। तो मेरे आपके लिए, अपने लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप देखिए कि हमारी अपनी लाइब्रेरी में इतनी खूबसूरत बुक्स रखी हुई हैं, अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी खुशबख्ती है, अगर आपको वक्त नहीं मिलता तो यकीनन आप अपने वक्त को सही मैनेज नहीं करते। किताबु तौहीद ये लाइब्रेरी की बुक है और तकवियतुल ईमान भी इसमें। अगर आप अभी रोज़ इसका एक सफ़ा पढ़ रहे होते जब से आप में से कुछ लोग आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल इस किताब को ख़त्म हुए कब से गुजर चुका होता। बैठ के खुद पढ़ें, पता आपको बहुत कुछ चला है, लेकिन जब तक खुद कोई किताब खोल के उसके साथ साथ जहन नहीं चलाएंगे, बात नहीं बनेगी। तो इस तरह की किताबें जिसमें एक इंसान को अपने और अल्लाह ताला के साथ मामला दुरुस्त दिखे। फिर एक और बहुत ही खूबसूरत किताब है, ये देखिए, अकीदा तौहीद का बयान, इंसान और अल्लाह, है कोई तीसरा इसमें? अब क्या मैं अपने रब के बारे में और अपने बारे में भी नहीं पढ़ सकती? ये मोहब्बत की बातें हैं। यहाँ आके आपको कोई कुछ भी ना पढ़ाए ना, लेकिन यहाँ का माहौल अगर आपका साथ देता है और आप एक किताब खोल के बैठ जाते हैं और उसको पढ़ना शुरू करते हैं, आधा घंटा अगर आप अपना रीडिंग टाइम लगा लें, कोई चीज़ आपको नहीं रोक सकती अल्लाह से मोहब्बत करने से। एक एक चीज़ इसमें बयान की हुई है कि अल्लाह का तारुफ, अल्लाह का चेहरा, उसके हाथ, उसके पाँव, कुरान में कहाँ क्या जिक्र है, फिर अल्लाह और बंदे के ताल्लुक़ की अलामतें क्या हैं, फिर इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, फिर ताल्लुक़ अल्लाह के साथ हमारे जो है। इंशाल्लाह ये बुक भी कहीं पढ़ाऊँगी, बहुत सिंपल सी बुक है, लेकिन यह है कि आपके मेरे लिए इसको खुद पढ़ना भी ज़रूरी है। जब तक मेरा आपका अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक खूबसूरत नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि जब एक चीज़ स्टक होने लगती है ना, उसके अंदर कोई बेहतरी ना आ रही हो, या लगता है कि जी हम आगे नहीं बढ़ रहे, तो फिर यकीनन उसके अंदर थोड़े से गौर व फिक्र की ज़रूरत होती है। तो लिहाजा आप इस बारे में मज़ीद इल्म हासिल करें, अपने आप को चेक करें। कोई किताब नहीं पढ़नी, कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं लिखना, अकेले बैठ के अल्लाह से बातें करें। क्या अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत दे, अल्लाह अपनी मार्फत दे, ऐ अल्लाह जो तू है, जैसा तू है मुझे वैसा सुझा दे, अल्लाह मुझे तेरे सिवा किसी से कोई उम्मीद ही ना रह जाए, सारी उम्मीदें तोड़ के दूसरों से एक रब के साथ जोड़ लें। आप देखेंगे आहिस्ता 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 आपको ताल्लुक महसूस होगा। ये मांगे, तड़पें, आज से आप दुआ में ये दुआ लाजिम कर ले कि अल्लाह मुझे अपना ताल्लुक दे, सच्चा तकवा दे, मोहब्बत दे, मखलूक से बेनियाज कर दे, तारीफ से बेनियाज कर दे, तनकीद से बेनियाज कर दे, नफे से नुकसान से बेनियाज करके मुझे अपना नियाजमंद बना ले। मुजाहिदा करें, अकेले में बैठें, तड़पें, रोएं, एक आंसू भी आपका निकल जाता है ना अगर इस दुआ के दौरान, तो यकीन करें कबूलियत के असबाब बन जाते हैं। कि अल्लाह जब मैं जो भटक रही हूँ तेरी तरफ आने के लिए, अल्लाह जब मेरी तड़प ही एक है तो अब तू मुझे अपना कुर्ब दे। और जिस दिन आपको अल्लाह की ये मोहब्बत मिलती है ना, आपके चेहरे से लोगों को पता लगनी शुरू हो जाती है, ये छुपती नहीं है। आपके हाल हुलिए, आपकी उठन बैठन, आपके तौर तरीकों, आपके लाइफस्टाइल से झलकता है कि ये बंदा अल्लाह से प्यार करता है। अल्लाह से प्यार बंदे को खूबसूरत कर देता है, मखलूक के दिल में बंदे की मोहब्बत अल्लाह ताला डाल देता है। आप अल्लाह से प्यार करें, देखिए बंदे आपसे प्यार करना शुरू हो जाएंगे। तो लिहाजा जब हम तौहीद की बात करते हैं तो फिर हमें शिर्क को भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह और बंदे के ताल्लुक में जो पहली दरार पड़ती है ना, वो शिर्क के साथ पड़ती है। तो थोड़ी सी शिर्क की हकीकत भी समझ लेते हैं। हकीकत शिर्क क्या है कि अल्लाह से मांगते मांगते किसी और से भी मांगना शुरू कर दिया। हाईलाइट करें, मुशरिक ये नहीं है कि वो अल्लाह से नहीं मांगता, तभी तो वो मुशरिक है कि मांग पहले अल्लाह से रहा था, फिर कुछ अरसा गुजर गया, मांगते मांगते चीज नहीं मिली, कहा चलो अब किसी और से भी मांग लूं, यही शिर्क है। और अगर अल्लाह से ना मांगे, सिर्फ किसी और से मांगे तो क्या होगा? कुफर होगा। फिर तो आपने इनकार ही कर दिया कि जी अल्लाह जी तो दे ही नहीं सकते, नाउज़ बिल्ला, तो फिर मैं किसी और से ले लूं। तो मुशरिक अल्लाह से भी मांगता है औरों से भी मांगता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में शिर्क इस तरह से आएगा जैसे रात के वक्त एक अंधेरे कमरे में चींटी आ जाए। अंधेरा कमरा और रात का वक्त हो और इसमें एक चींटी जा रही हो, किसी को वो नज़र नहीं आएगी। फरमाया इसी तरह से शिर्क मेरी उम्मत में आ जाएगा, यानी लोग शिर्क के आमाल को तौहीद समझ कर करेंगे। आज ऐसा हो रहा है कुरान मजीद में कि अल्लाह ताला बास लोगों को क्यामत के दिन झिड़केंगे और पूछेंगे, मैंने तुमसे कह दिया था कि इन अल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला एक शिर्क को माफ़ नहीं करेंगे और शिर्क के अलावा बाकी जितने गुनाह हैं सबको माफ़ कर देंगे अगर चाहेंगे, फिर भी तुम शिर्क करते रहे। ये सूरत निसा की आयत 48 है। तुमने ज़िंदगी गुजारी तो मुशरिक की ज़िंदगी गुजारी, वो जवाब देंगे ثُمَّ لَمْ تَقُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ। फिर ऐसा होगा कि इनकी अक्ल में सिर्फ यही बात आएगी, वो अल्लाह के हजूर यूं अर्ज करेंगे, हमारे परवरदिगार हम तेरी कसम खा कर कहते हैं हम तो मुशरिक नहीं थे। सूरत अलनाम 23 में, हमने तो मुशरिकों की ज़िंदगी नहीं गुजारी, हम तो तौहीदी बन के रहे, सिर्फ अल्लाह की इबादत करते रहे। अफसोस कि हमने इस आयत की तरफ ध्यान नहीं दिया। अल्लाह ताला गज़ब के आलम में पूछ रहे हैं कि तुम मुशरिक बन के क्यों रहे। दूसरी तरफ वो जवाब में कहते हैं, आपके नाम की कसम हम तो मुशरिक बन के रहे नहीं। नाउज़ु बिल्लाह, किसी की इस वक्त ये जुरत नहीं हो सकती कि अल्लाह के सामने झूठ बोले, अल्लाह के नाम की झूठी कसम खा ले। इसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, सिवाय एक बात के कोई और मफहूम नहीं निकलता कि ये लोग जिंदगी भर मुशरिक बन के रहे, शिर्क करते रहे और इसी को तौहीद समझते रहे। यानी आप लिख लें कि वो पूरी नेक नियति के साथ शिर्क करते रहे। इनका मौलवी इनको बता रहा है कि यही तौहीद है, इसकी गुंजाइश है, यही वजह कि अल्लाह के सामने वो जुरत करेंगे, कसम खाएंगे, खल्फन यानी कसमियाँ बयान करेंगे, हम तो मुशरिक नहीं रहे। यही बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि मेरी उम्मत में शिर्क आ जाएगा इस तरह से कि इन्हें पता भी नहीं चलेगा, जैसे रात को अंधेरे कमरे में चींटी आ जाती है, इसे देखना मुश्किल होता है, इसी तरह से शिर्क इनके अंदर आ जाएगा। मालूम हुआ कि हमें इस मामले में ज़रा एहतियात की ज़रूरत पड़ेगी, ये देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम शिर्क कर रहे हों और कभी हमने बैठ के ईमानदारी से गौर ही ना किया हो कि ये शिर्क हो रहा है। यहाँ फिर एक शौरी अमल की ज़रूरत, और इस शौरी अमल की बुनियाद कुरान मजीद होगा। एक शिर्क यह है कि किसी चीज़ से तुम इतनी मोहब्बत करो कि अल्लाह की मोहब्बत इसके मुकाबले में दब जाए तो तुम मुशरिक हो गए। वमिन अन्नास मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। लोगों में से बाज़ ऐसे होते हैं जो अल्लाह के साथ गैरों को शरीक ठहराते हैं और गैरों से इस तरह मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए। وہ لوگ تو ایمان لائے ہوئے، ان کی محبت اللہ سے شدید تر ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر اللہ سے شدید ترین محبت ہے تو ایمان ہے، اور اللہ سے شدید ترین محبت نہیں ہے، کسی اور سے ہے، تو جس سے شدید ترین محبت ہے اسی کو ہم نے خدا بنا رکھا ہے۔ بات سچ ہے نا؟ سب سے زیادہ تو کوئی ایک ہی ہوگا نا، تو جب اللہ سے اوپر کوئی دوسرا چلا گیا تو اللہ تعالیٰ کا نام تو خود ہی دوسری طرف چلا گیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تائیس عبد الدرہم، تائیس عبد الدینار، عبد الخمیلہ، تائیس عبد الخمیسہ۔ درہم کا عبد ہلاک ہوا، کیا مطلب؟ مال کا بندہ، جس کی زندگی کا مقصد مال مال مال۔ تائیس عبد الدینار، دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا، یعنی درہم اور دینار دو کرنسیز تھیں، یعنی دینار کو جس نے معبود بنا لیا وہ ہلاک ہو گیا۔ فرمایا تائیس عبد الخمیلہ، کرسی کا بندہ، کرسی سے کیا مراد ہے؟ عہدہ، اقتدار، کرسی کا بندہ ہلاک ہو گیا۔ جب و دستار کا بندہ ہلاک ہو گیا۔ فرمائے من شغلک عن اللہ فہو سنمک، جس نے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا وہی تمہارا بت ہے، تم اسی کے پجاری ہو۔ سوچے ذرا، کس چیز نے میں اللہ کی یاد سے غافل کیا ہوا ہے؟ ہماری تو چھوٹی چھوٹی پلاسٹک کی چیزیں، گھر کا سامان، ہمارا تو گھر داری کا سامان ہی بعض دفعہ ہمارا سنم بن جاتا ہے۔ ہم کتنے پرفیکشنسٹ بنتے ہیں اپنا گھر چلانے میں، سوچتے بھی نہیں ہے کہ ہم اس سے بڑھ کر کچھ اور کر سکتے ہیں۔ تو جس چیز کو پکڑا، اللہ کو چھوڑا، نماز چھوڑ دی اور آپ کھانا پکاتے رہے تو آپ کھانے کو سنم بنا رہے ہیں۔ اس کو شرک فی المحبت کہتے ہیں، یعنی ہم اللہ کو مقصد یا ترجیح، یعنی پرائیورٹی نمبر ون بنانے کی بجائے کسی اور چیز کو پرائیورٹی یا ترجیح دے دے۔ اللہ کو محبوب حقیقی بنانے کی بجائے کسی اور چیز کو محبوب حقیقی بنایا جائے، اور اللہ کی محبت اس کے مقابلے میں دوسرے تیسرے درجے پر آ جائے، یہ شرک ہے۔ اس کو ہائی لائٹ کر لے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہوتی، اس میں ہوتی ہے، لیکن سیکنڈ پہ آ گئی یا تھرڈ پہ آ گئی۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہ ہم اپنے آپ کو پیچھے کرتے ہیں۔ کس چیز سے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو درست نہیں کرتے۔ نقصان کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم اس کو دوسرے پہ لیتے ہیں۔ دیکھیں، آپ اس کو یوں سمجھیے، فرسٹ پوزیشن والا چاہے دو نمبروں کے فرق سے آئے یا آدھے نمبر سے آئے، فرسٹ تو وہی ہوتا ہے نا۔ آدھا نمبر پیچھے ہوئے یا دو ہوئے، آپ دوسرے پہ آ جائیں گے۔ ایک بندہ اللہ کی نظروں میں ڈی گریڈ ہو جاتا ہے جب وہ شرک کرتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کتنی ضرورت ہے اس وقت کی کہ ہم اپنے آپ کو ان ساری چیزوں کے ساتھ رکھیں تو پتہ چلے گا۔ اور آپ اس کو یوں سمجھیے، دنیا میں ہم جس چیز کو اہم سمجھتے ہیں نا، ہم کبھی اس سے کم پہ راضی نہیں ہوتے، ہے کہ نہیں ایسا؟ آپ آزما کے دیکھیے گا، جس چیز کو اہم سمجھے گا نا، ہم کہیں گے کہ بس اس کو میں پیچھے نہیں کر سکتی، اس کے ساتھ تو بس میرا معاملہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اور میں اس کے بغیر جا نہیں سکتی، وہ نہیں کر سکتی۔ تو کیا اللہ کی ذات ایسی ہے جس کو ہم پیچھے ڈال دیں؟ آپ کہہ لیں کہ شرک ہے اللہ کی ذات کو پیچھے ڈالنا، دوسروں کو آگے لے آنا۔ دیکھیے، میں سوچ رہی تھی، ایسی کھڑکی میں سے آسمان دکھ رہا تھا تو میرے دل پہ خشیت طاری ہو رہی تھی۔ اتنا بڑا آسمان، یہی آسمان پاکستان میں، یہی آسمان امریکہ میں، یہی UK میں، پوری دنیا گھوم کے دیکھ لیجئے، پوری دنیا پہ ایک ہی آسمان ہے۔ اور اس آسمان کا رب، رب السماوات والارض، یہ زمین جس پہ میں کھڑی ہوں، اتنی بڑی زمین، اور یہی زمین جہاں آج تک زندگی میں جا سکی، یہ زمین میرے ساتھ تھی، اس زمین کا رب، تو وہ کتنا بڑا ہوگا، وہ کتنا بڑا ہوگا۔ ایک انسان اپنی ہستی کو ڈبو دیتا ہے جب اللہ کی بڑائیوں پہ یقین کرتا ہے۔ ایک انسان اللہ کو جب نہیں مانتا یا اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتا ہے نا، تو اصل میں وہ پردے ڈالا ہوا ہے آنکھوں پہ، اندھیرا ہے اس کی آنکھوں پہ۔ ایک دفعہ پتہ تو چل جائے کہ میرا رب کیا کرتا ہے، کیا کر سکتا ہے، تو پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ تعلق کیسا ہوگا۔ تو اپنے آپ کو نہ جھنجھوڑا کریں۔ مجھے لگتا ہے کہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، اپنے آپ کو हमेशा इस नजर से देखा करें, इस वक्त अल्लाह मुझसे क्या चाहता है, इस वक्त अल्लाह ताला का तकाजा मुझसे क्या है। और आपको दिन में 10-15 मौके ऐसे नजर आएंगे, दो डिफरेंट तकाजे टकराते हैं, एक तरफ बच्चों का मुतालबा, एक तरफ रब का, एक तरफ आपके शौहर की बात तो एक तरफ रब की, एक तरफ माल की, जॉब की, काम की, दूसरी तरफ रब की है। नुकसान क्या होगा कि अगर आप इन चीजों में खो गए तो आपको अपना रब नाराज करना पड़ेगा। और जिंदगी का खुलासा ही है ये, जो दिन में 5 नमाजें हैं ना, ये तौहीद सिखाती हैं। नींद छोड़ी, नमाज पढ़ी, खाना छोड़ा, नमाज पढ़ी, लोगों के काम कर रहे थे छोड़े, नमाज पढ़ी। तो नमाज तो पढ़ लें लेकिन अमली जिंदगी में ना छोड़ें। कम से कम हमारे अंदर अब एक ऐसा अमल लोगों को दिखना चाहिए कि बस आज के बाद नहीं, सॉरी, जो कहना था कह दिया, जो करना था कर दिया। तो सोचें और इस पे अपना मुशाहिदा करें और अपने खुफिया छुपे हुए शिर्क को ढूंढें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब गहरी नजर से अपना आप मुआयना करेंगे तो आपको अंदर से बहुत कुछ दिखेगा। और मैंने जो चीज देखी है कि असल जंग हमारे ईमान बिल्लाह की ही है। आप अल्लाह के साथ कैसा मामला करते हैं, एग्जैक्टली इसी का रिस्पॉन्स है कि अल्लाह आपके साथ कैसा मामला करता है। कोई किसी के जहन में कोई बात है, कोई सवाल है तो पूछ लें। जी आप मामना
ये आयत आज का टाइम हो गया तो मुझे पता है कि मैंने अब हस्बैंड साहब बैठे, मैं बातें कर रही नहीं, मैंने इनको छोड़ के मुझे नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन मुझे फिर भी समझ नहीं आती कि मुझे मोहब्बत कैसे
देखिए,
पता
अगर आप
चले, कैसे
नमाज
जा
पढ़
सकती
लेती हैं ना उठ के तो इंशाल्लाह अल्लाह से ही मोहब्बत है। नींद छोड़ के पढ़ लेती हैं तो नींद से ज्यादा अल्लाह से। यही तो हम सारा जो भी पिछला हम पढ़ रहे हैं यही पढ़ रहे हैं कि अल्लाह से मोहब्बत अमल से दिखती है। ये ढकोसला है कि बैठ के अल्लाह हु की तस्वीयां करते रहें तो मोहब्बत आती है, अमल करेंगे तो मोहब्बत दिखेगी।
जी। मैं इस पे गौर कर रही थी कि एक तो होता है जाहरी गुनाह जिसको हमें पता होता है
तो
कि
इसी के लिए फिर इल्म की दौलत है ना। इल्म से तो पता चलेगा कि ये काम जो नेकी का कर रहे हैं ये है भी कि नहीं।
है भी कि नहीं,
डॉक्टर दवाई देता
लेकिन
जाए और
आपकी
उसको
मुंह
पता ही नहीं कि ये सही दवाई दे रहा हूँ कि गलत दे रहा हूँ, तो फिर पता नहीं चलेगा ना कि उसने दी है कि नहीं।
इसको तो हम गुनाह समझते समझ
गुना
ही रहे हैं।
समझते नहीं है। गलत काम करते हैं तो तौबा कर लेते हैं, लेकिन इस तरह के बिदात वाले और शिर्क वाले काम करके तो हम गलत समझते ही नहीं, तभी तो हम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे रुकते हैं, फिर आगे वाला हिस्सा करेंगे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।